पैक्ट में क्या फ्लॉज थे, क्या कमियां थी, क्या अयूब खान इस पैक्ट को बनना के फेवर में थे, और अगर वो इसकी फेवर में नहीं थे तो इंडस वाटर के पैक्ट के फेवर में कौन लोग थे, इंडस वाटर के जो मुआहिदा है उसकी फेवर में कौन लोग थे, और फिर कोई एक प्रॉब्लम्स आई तो फिर वो क्या प्रॉब्लम्स आई, अगेन उन प्रॉब्लम्स में को जब अल्टीमेटली इंटरनेशनल बॉडीज को इन्वॉल्व किया गया तो कौन लोग थे जहां पे इंडिया ने एक इट्स वेरी कॉमन थिंग कि दो लोगों के दरमियान अगर कोई तय पा रही है और एक तीसरा फरीक शामिल है तो जो बंदा अपर हैंड है वो कहता है अच्छा अगर तुम कर ही रहे हो ना ये भी शामिल कर दो, ये भी शामिल कर दो, बीच में ये भी शामिल कर दो। क्या वो चीजें हैं जिनको हिंदुस्तान ने फिर शामिल करवाया था, ठीक, और आज हम कहां पे हैं। अगर शिमला मुआहिदा के बारे में कहा जाता है कि अगर शिमला मुआहिदा मुअत्तल किया जाए तो इंडस वाटर के बाद शिमला मुआहिदे की क्या अहमियत थी, और अगर शिमला मुआहिदा कैंसिल होता है तो फिर इंडस वाटर का जो मुआहिदा है वो किस सिचुएशन के बीच में रहता है, इस तमाम के बारे में हम बात करेंगे। शुक्रिया करती चलूं अपने स्पॉन्सर्स का। हमने पिछले दिनों में लैम्फाई के बारे में आपसे बात की, हालांकि वो एडवर्टाइजर अब हमारे साथ दे हैड अ वन मंथ टेन्योर विद अस, बट इट्स अ ग्रेट सर्विस, यानी इट इज इन माय फोन, डिड नॉट नीड, कोई भी मेरे उसको जरूरत नहीं थी, सो ही इज ऑन विद अस, ठीक है, ही इज रेडी जनाब, मौजूद है। लैम्फाई आप अपने फोन से इंस्टॉल करें, इट डज नॉट नीड माई क्रेडेंशियल्स इन अ वे कि मेरे बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। यस, कैनेडा का और दुनिया का रूल है कि दे डोंट वॉन्ट के मनी लॉन्ड्रिंग हो, जिसकी वजह से दिस इज आरफा, उनको मेरा ड्राइवर लाइसेंस चाहिए, टेलीफोन शिनाख्त करता है कि ये आरफा ही है, हुई है। Then they need my email address because they have to develop a wallet, एक मेरा सेफ उन्होंने बनाना होता है जिसमें मेरा पैसा आएगा, जो मेरे अकाउंट से वहां पे आएगा, जिसको मैं ई ट्रांसफर करूंगी। अब जब जब मुझे जरूरत होगी आई जस्ट हैव टू सेंड दैट मनी टू एनी बडी, फॉर एग्जाम्पल समबडी है आई हैड टू सेंड मनी टूडे, तो मैंने क्या किया, द ओनली थिंग उनसे मैंने ये कहा, मैंने कहा प्लीज सेंड मी योर चेक, ठीक, मैं आपको बता भी देती हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू इन डिटेल, मगर मैंने उनसे कहा मुझे कैन यू प्लीज सेंड मी योर चेक, तो उन्होंने मुझे अपना चेक भिजवा दिया, ठीक। अब वो चेक में उनका मैं आपको दिखा भी देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन आई आस्क हिम टू सेंड मी हिज चेक, उन्होंने चेक भेजा, तो इस चेक में उनका बिन नंबर जो बैंक का नंबर है वो दिया हुआ है, बैंक की ब्रांच कौन सी है, बैंक का नाम क्या है, उनका अकाउंट नंबर क्या है, वो नाम बैंक का नाम, उनका अकाउंट नंबर और उनका बिन नंबर जो है वो मैंने फीड करना है और पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा, और डॉलर का रेट बहुत अच्छा दे रहे हैं, दैट इज लैम्फाई। और एक और बहुत खूबसूरत बात है कि अगर आप $150 से ज्यादा की रकम भेजते हैं, जीरो मनी ट्रांसफर फी, कोई एक पैसा नहीं आपको देना पड़ता मनी ट्रांसफर का, आपको रेट भी अच्छा मिलता है और उस जिसको मैंने भेजा बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। आई हैव माई वंडरफुल गेस्ट जनाब सैयद जमात अली शाह साहब मेरे साथ हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर आप रहे हैं, और सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सैयद जमात अली शाह साहब, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल मैं खैरियत से हूं जी।
बहुत शुक्रिया सैयद जमात अली शाह साहब, के बारे में जब मैंने भी आपसे कहा कि ये इंडस वाटर कमिश्नर रहे हैं, बड़े अरसे तक रहे हैं और हैड अ ब्रिलियंट रिकॉर्ड एज अ कंट्रीज वॉच डॉग ओवर द इंडियाज एक्शन अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। सैयद जमात अली शाह साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें ये बता दीजिएगा, सिंध तास का मुआहिदा है क्या, यानी जब 1960 में हम कहते हैं इसका वजूद आया तो 1958 8 अक्टूबर को जनाब प्रेसिडेंट अयूब हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और इस मुआहिदे की क्यों जरूरत पेश आई, और क्या प्रेसिडेंट अयूब जिनके जमाने में ये मुआहिदा तय पाया था वाज इन फेवर ऑफ दिस और नॉट?
बहुत शुक्रिया जी, मैं समझता हूँ कि ये पहला प्रोग्राम है कि जो ٹریٹی کی جو شروعات ہیں، ڈسپیوٹ کس طرح جو ہے یہ سامنے ہمارے آئی، اس کا پھر ریزولوشن کیسے ہوا، تو میں اس کی ہسٹری بڑی دلچسپ ہے کہ پنجاب کی پارٹیشن ہوئی 1947 میں، جو لائن ڈرا کی گئی بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پنجاب، تو اس میں جو ہیڈ ریگولیٹر تھے دو نہروں کے، جو کہ ایک یو بی ڈی سی کنال ہے جو کہ لاہور کے ایریا کو پانی دیتی تھی، اور دیپال پور کنال جو پنجاب جو ہے سودرن کا ایریا جو ہے اس کو پانی دیتی تھی، ان دونوں کو ہیڈ ریگولیٹر جو ہے وہ انڈیا کی طرف آئے، یعنی کہ مادھو پور ہیڈ ورکس اور فیروز پور ہیڈ ورکس، یہ بارڈر کی دوسری طرف۔ تو اس وقت جو انگریز تھے جو یہ پارٹیشن کو اوور سی کر رہے تھے، انہوں نے دونوں پارٹیوں سے پوچھا، کیونکہ اس سے قبل ایک چیف انجینئر پنجاب ہوتے تھے اریگیشن کے، اور اسی میں دفتر میں لوگ بیٹھتے تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سردار بھی تھے۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ ہماری یہ جو پارٹیشن کی لائن ڈرا ہوئی ہے تو اس میں کیا خیال ہے، کوئی واٹر کا ایشو تو نہیں آئے گا آپس میں تقسیم کا؟ تو اس وقت دونوں پارٹیوں نے یہ کہا کہ ہمارا خیال نہیں کوئی ایسی بات ہوگی، ہم تو روز آپس میں ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، کوئی ایسا اندیشہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے پھر اوارڈ دے دیا اکارڈنگلی۔ اب جیسے یہ لائن ڈرا ہوئی اور کچھ مہینے گزرے، تو انڈیا کی طرف سے پانی میں فلکچویشنز آنی شروع ہو گئی، یعنی کبھی پانی کم ہو جائے، کبھی زیادہ ہو جائے، اور اسپیشلی جب سوئنگ کا پیریڈ ہوتا ہے یا کراپس کی میچورنگ کا آتا ہے زمانہ، تو اس میں پانی وہ کم ہو جائے۔ تو پاکستان پنجاب نے کمپلینٹ کی انڈین پنجاب کے جو چیف انجینئرز ہیں کہ یہ پانی کی جو کمی آ رہی ہے تو اس کو یہ دیکھا جائے یہ کس طرح ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اپرائز کیا گیا کہ یہ اس سلسلے کو دیکھا جائے، یہ پانی ہمیں اگر کم ہو جاتا ہے تو ہماری ایگریکلچر ڈوزز جو ہیں وہ تو ہارم ہوگی۔ تو اس پر دونوں گورنمنٹس میں آپس میں ایک میٹنگ کی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پانی جو ہے یہ چلتا رہے جس طرح یہ چل رہا تھا، کیونکہ اس وقت جو رول ان ووگ یہ تھے، وہ کسٹمری پریکٹس بھی یہی تھی کہ اپر رائپیرین کا پانی جو ہے وہ لوور رائپیرین کی طرف آنا ہے، اس کو وہ روک نہیں سکتے جو اوپر رائپیرین ہے۔ اور اس میں لیکن انڈیا نے یہ بات کی کہ ہیڈ ریگولیٹر تو ہمارے پاس ہیں، پانی ہم پاکستان کو دے رہے ہیں، ہمارا اس پر خرچہ آتا ہے، تو آپ ہمیں کچھ پیسے ان کے اخراجات کے لیے دیں۔ پاکستان نے اگری کر لیا کہ ہم اس کو دیں گے، لیکن چند ہی کچھ ہفتوں بعد انڈیا نے یہ کہہ دیا کہ ہم پانی جو ہے آپ کو دیتے رہیں گے، لیکن آپ اس کا پرماننٹ بندوبست کوئی کریں، کیونکہ ہم فیوچر میں یہاں سے پانی آپ کو نہیں دے سکیں گے۔ تو اس پر ایک سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہو گیا دونوں کینال کا علیحدہ علیحدہ۔ ایک کینال کا ختم ہو رہا تھا دسمبر 1947 کو، ایک کا ختم ہو رہا تھا یہ 28 فروری 1948 کو۔ یہ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ تھا کہ پانی چلتا رہے گا جیسے آ رہا ہے، لیکن پاکستان اپنا ارینجمنٹ جو ہے وہ کوئی آلٹرنیٹ اس کا سوچے کر لے۔ اچھا، اب 3 مہینے گزر گئے تو پاکستان کی طرف سے کسی نے انڈیا کو اپروچ نہیں کیا کہ جی سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ جو ہے یہ مکمل ہو رہا ہے دونوں کینالز کا، تو اب کیا کرنا چاہیے۔ تو انڈیا نے 1 مارچ 1948 کو دونوں نہروں کا پانی بند کر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ ایور اگریشن بائی انڈیا آن دس فلو آف واٹر ٹو پاکستان۔ اب یہاں پر ڈسپیوٹ جو ہے آپس میں جب شروع ہو گئی تو اس میں بے شمار میٹنگ ہوئی، اور ایشو کسی طرف بھی جو ہے وہ نہ لگ سکا۔ تو ایک کولیئر میگزین جو ہے ان کے جو چیف ایڈیٹر تھے، انہوں نے اپروچ کیا ڈیوڈ لینن تھیال جو ٹینیسی ویلی کے چیئرمین تھے یو ایس اے میں، اور وہ اس وقت اٹامک انرجی کے کمیشن کے بھی چیئرمین رہ چکے تھے۔ کولیئر میگزین کے چیف ایڈیٹر نے کہا جی آپ تشریف لے جائیں پاکستان اور انڈیا، کیونکہ وہاں تو بڑی نیا ملک بنے ہیں اور ان کا آپس میں بڑی کانفلکٹ ہے واٹر ایشوز پہ۔ تو ڈیوڈ لینن تھیال جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا، انہوں نے جب جا کر دونوں پارٹیوں سے ملے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہی بڑا ڈفرینٹ ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ جو انڈین جو ریور بیاس ستلج کا پانی نیچے آتا رہے، لیکن انڈیا نے کہا نہیں جی یہ پانی میں نے یہ پانی بالکل نہیں دینا، یہ پانی میں نے لینا ہے، دوسرے جو تین دریا ہیں وہ پاکستان کو دی. اب ظاہر ہے کہ جو پاکستان میں انجینئر تھے ان کا یہ خیال تھا یہ جو پرپیچول فلو آ رہا ہے راوی ستلج بیاس کا اکٹھا ہو کر ہمارے پاس، یہ تقریباً اس وقت کوئی 28-29 ملین ایکڑ فیٹ پانی سسٹم میں تھا تینوں دریاؤں میں. کچھ انڈیا استعمال کر رہا تھا، کچھ ہم نیچے پاکستان میں استعمال کر رہے تھے. تو پاکستان نے ڈیوڈ لیلتھیال کو کہا کہ یہ پانی جو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنی جگہ، اس سے فالتو پانی بھی موجود ہے، وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور ہمارا ایشو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن انڈیا اس بات پہ نہ مانا، اور پھر ڈیوڈ لیلتھیال نے جا کر جب کولیئر میگزین کو رپورٹ دی تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا. انہوں نے کہا جی اس طرح واٹر ڈسپیوٹ دونوں ملکوں میں شروع ہو چکی ہے اور بوتھ دی کنٹریز آر ایٹ دی برنک آف وار، مطلب صورتحال اس طرح جو ہے خراب ہو چکی تھی. اس میں انہوں نے مزید لکھا کہ ورلڈ بینک مے انٹروین. تو ورلڈ بینک اٹریکٹ ہوا تھرو کولیئر میگزین اور انہوں نے پھر اپروچ کیا دونوں گورنمنٹس کو کہ ہمیں اپرائز کریں کہ ہم کیا اس میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنے ٹیکنیکل ڈیلیگیشن بھی بھیجے، کیونکہ ایشو تو یہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا کہ ٹھیک ہے جی یہ دو ڈوین ہو گئی ہے تو پانی میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. لیکن جب دونوں پارٹیوں کے انہوں نے پوائنٹ آف ویو دیکھا تو انہوں نے ٹوٹل سروے کیا چھ دریا کا کہ چھ دریا میں پانی کتنا ہے. تین دریا اگر انڈیا کو دے دیے جائیں تو ان میں جو نہریں بہتی ہیں کیا وہ تین دریاؤں کی ریپلیسمنٹ ڈیم بنا کر ہم اس میں کر سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ورلڈ بینک کے جو ایکسپرٹ تھے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ تین دریا انڈیا چونکہ مان نہیں رہا اس کو دے دیے جائیں، اور جو تین دریا ہیں جس میں چناب، جہلم اور انڈس ہیں تو ان پر جو ہے دو ڈیم بنا دیے جائیں، جیسے ایک منگلا ہے، ایک تربیلا ہے، ایک تیسرا ڈیم بھی اس وقت پرپوز ہوا تھا. تو اس کو وہاں سے ایک لنک کینال سسٹم بنا کر پانی جو ہے ان دریاؤں میں ڈالا جائے، یہاں سے ان نہروں کو دیا جائے جو کہ نہریں ڈپرائیو ہو جائیں گی راوی ستلج بیاس کے پانی سے. تو پاکستان کے جو ڈیلیگیشن تھا واشنگٹن ڈی سی میں اس نے ایگری نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں پانی انڈس ریور اس کا راوی ستلج بیاس کا چاہیے. تو وہ ڈبلیو اے ویلر تھے اس وقت پریزیڈنٹ آف دی ورلڈ بینک. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ورلڈ بینک کی پروپوزل ایکسپٹ نہیں کرتے تو پھر گو بیک فائٹ وتھ انڈیا اینڈ گیٹ یور واٹر بیک. اب پاکستان کے پاس آپشن نہیں تھا. یہ میں یہ بات کر رہا ہوں 1954-55 کی. تو اس وقت پاکستان جو ہے ہاف انکلائنڈ ہو گیا کہ ہم ٹی ٹی جو ہے اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں کرنا ہے، کیونکہ پانی جو ہے ابھی تو آ رہا ہے لیکن انڈیا اس میں فلکچویشن بھی دیتا ہے اور اس کا فیوچر بھی ہمیں معلوم نہیں کیا ہوگا. اب 58 میں مارشل لا آ گیا، ایوب صاحب تشریف لے آئے، ان کو یہ ایشو ورثے میں ملا. جب ان کو یہ ایشو ملا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس ایشو کو حل ہونا چاہیے. میرے پاس اور بڑے جو ایشوز ہیں جو ہیں ابھی اس وقت میں جس کو کنفرنٹ کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایکسپرٹس کو اور جو ڈیلیگیشن تھے ان سے ڈسکشن کی، ڈیبیٹ کی. تو انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ورلڈ بینک کی یہ فائنل پرپوزل تھی تو ہم تو اس کو نہیں مانے. لیکن ایوب خان نے اس وقت کہا کہ یہ ورلڈ بینک کی پرپوزل جو ہے یہ فیزیبل لگتی ہے، تو اس میں اگر یہ ہیلپ کرتے ہیں ہمیں منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم بنانے میں اور لنکس جو کینال ہیں اس کے بنانے میں، ہمیں یہ ایکسپٹ کر لینی چاہیے. تو الٹیمیٹلی پھر یہ ہوا کیونکہ لوگوں کی جو آواز تھی جو ان کے کچھ خلاف تھی اس کو دبا دیا گیا، اور کچھ ملک جو تھے فرینڈلی کنٹری تھے اس انہوں نے کچھ لون اور گرانٹس دی. انڈیا چونکہ ہمارے سسٹم جو کمبائنڈ تھے تو ان کے حصے میں جو خرچہ آتا تھا انہوں نے بھی وہ خرچہ جو ہے وہ ایگری کیا کہ ہم بھی اس میں جو ہے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالیں گے. تو اس طرح جو ہے یہ ڈسپیوٹ 1960 میں یہ معاہدہ سائن کرنے کے بعد جو ہے وہ ریزالو ہوئی. لیکن اس میں امپورٹنٹ جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ 59 میں جب ہم تیار ہو گئے پاکستان اور انڈیا کے معاہدے کو ہم سائن کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈرافٹ بن چکا، تو انڈیا نے ایک اور جو ہے اس میں ایڈیشن دے دی. کیونکہ تین دریا انڈیا کے تھے، تین ہمارے تھے، لیکن انڈیا نے کہا کہ جو تین دریا آپ کو دے رہے ہیں انڈس، سوری ये जेलम, चनाब और इंडस, इसमें कुछ स्पेसिफाइड यूजेज हमें दिए जाएं। अब बात ये है कि जब अब टीटी साइन होने के करीब है, 10 साल इस पर नेगोशिएशन होती रही तो लोग भी टायर्ड हो जाते हैं, तो उन्होंने अल्टीमेटली पाकिस्तान ने फैसला किया, क्योंकि ये भी था कि उधर कश्मीर में मुसलमान लोग रहते हैं, उन्होंने कहा ठीक है हम कुछ यूजेज इनको दे देते हैं। तो वो यूजेज क्या थे? उन्होंने कहा कि हमें बिजली मनसूबे बनाने की इजाजत दी जाए, जो कि पानी आएगा बिजली बनाकर नीचे चला जाएगा, और कुछ लिमिटेड स्टोरेज जो है बहुत ऊपर को ट्राइब्यूटरीज पर जहां से इफेक्ट ना हो पाकिस्तान को, वो हमें मिल जाए, वो भी उनको दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो रकबा पड़ा हुआ है 13 लाख एकड़ है, तो इसको जो है ना एग्रीकल्चर में लाने के लिए भी पानी रह जाए, वो पाकिस्तान ने। फिर डोमेस्टिक यूजेज हैं, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल यूजेज हैं, और नेविगेशनल यूजेज जो है वो भी दे दिए गए कश्ती लाने के लिए। अब ये था कि जब ये दिए गए तो पाकिस्तान के डेलीगेशन ने कहा जी हमें इसके ऊपर सेफ गार्ड क्या मिलेगा, हमने डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया 3 दरिया देने के बाद, अगर वो डिस्प्यूट दोबारा खड़ी हो जाए इन जो है ये हमने जो अनाउंस उनको दिया है तो हमारा क्या बनेगा। उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने फिर कहा कि हम आपको सेफ गार्ड ये देते हैं कि इंडिया जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उनके कुछ डिजाइन क्राइटेरिया होंगे, और जो 13 लाख एकड़ रकबा शराब करेगा इंडिया हर साल हमें 6 महीने बाद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो उस पर उन्होंने एनेक्सर डी और एनेक्सर ई टीटी के साथ लगा दिए, जिसमें डिजाइन क्राइटेरिया जो है इसमें मौजूद थे, और उन्होंने कहा जी रोजाना का पानी जो है अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो 50% से 130% की रेंज में रहेगा, और लेकिन एक हफ्ते का बैलेंस ऊपर जो आएगा वो एक हफ्ते का बैलेंस पाकिस्तान को नीचे जो है ये मिलेगा। अब हमारी जितनी भी ये डिस्प्यूट्स हो रही हैं और ये जब से टीटी हुई है वो इसका नतीजा है कि जो हमने इंडिया से 59 में एग्री कर लिया कि आपको हम ये सर्टन स्पेसिफाइड यूजेज देते हैं, अगर ये यूजेज ना होते और हमारे पास ये तीनों दरिया हमें एक्सक्लूसिवली मिल जाते तो मेरा ख्याल है ये इशू ना होता। लेकिन जब हम टीटी के प्रोस एंड कॉन्स भी हम देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि ये 6 दरिया आज हमारे पास पूरे बह रहे होते और मोदी साहब वजीर आजम होते और 6 दरिया के पानी का वो कह देते कि मैं बंद करता हूं, तो मेरे ख्याल शायद हमें वो भी ना मिलता जो हमने 1960 में जो हमने अचीव जो है इस सिलसिले में जो है वो किया है। अब आ जाते हैं कि टीटी की इम्प्लीमेंटेशन कैसे, 1960 के बाद जाहिर है कि उन्होंने एक परमानेंट इंडस कमीशन बना दिया, यानी दोनों तरफ से कमिश्नर होंगे और इंडिया से होगा, ये दोनों ये परमानेंट इंडस कमीशन बन जाता है। टीटी में ये प्रोविजन दे दी गई कि इंडिया जो प्रोजेक्ट बनाएगा वो पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन डेटा डिजाइन देगा, अगर उस पर पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन हैं तो वो कमीशन लेवल पर हल होंगे, कमीशन नहीं कर सकती। अगर टेक्निकल इश्यूज हैं तो न्यूट्रल एक्सपर्ट एक अपॉइंट करेंगे वो करेगा, अगर लीगल इश्यूज हैं तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, और वर्ल्ड बैंक ने मायदा करने के बाद उनकी जो उसकी ऑब्लिगेशन है वो सिर्फ 2 है, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाना और एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को बनाना, और फिर उनको केस देना जो है हमारी गवर्नमेंट का काम है, और उनके दोनों के डिसीजन जो है वो दोनों कंट्रीज के लिए जो है वो बाइंडिंग है, उन पर वो अमल दरामद जो है वो उनका होना चाहिए। अच्छा, अब 1960 से 1970 तक, क्योंकि ये जो मायदा हुआ है ये इंडियन टर्म से हुआ है, और मैंने कई बार अपनी सर्विस में कहा था इट हैज नेवर बीन ए हैप्पी मैरिज बिटवीन टू कंट्रीज, क्योंकि हमने अमर मजबूरी किया था, हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, लिमिटेड ऑप्शन थे, लेकिन टीटी ने बाद में यह साबित किया कि जो दरियाओं में हमारे पास पानी उस वक्त तकरीबन 64 मिलियन एकड़ फीट परपेचुअल फ्लो आ रहा था, तो ये डैम बनने की वजह से हमें वो 104 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है बन गया जो कि हम सारा साल जो हम यूज करते रहे। तो लेकिन 1960 से 1970 तक इंडिया चूंकि विन की थी ये वार वो बड़े कंफर्टेबल थे, लेकिन 70 के बाद 1917 की वार भी होगी, लेकिन 1970 में जो शेरे कश्मीर थे उनके पपेट चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला साहब, उनके जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक शोर मचा दिया, यानी कि उनकी ये एक पॉलिसी थी कि शेख अब्दुल्ला साहब ये कहें कि इंडियन पंजाब को तो पानी मिल गया, جو راوی ستلج بیاس کا اور چناب جہلم انڈس کا پانی جو کشمیر سے جاتا ہے یہ سارا پاکستان کو دے دیا، تو ہمیں کیا ملا؟ انہوں نے اس وقت ٹریٹی میں ریویژن کی جو ہے یہ ایک داستان وہ چھوڑنی شروع کر دی کہ ٹریٹی کو ریوائز کیا جائے، ہمیں جو لمیٹڈ یوزز دیے جائے ہیں ان کو ایکسپینڈ کیا جائے اور ہم اپنی مرضی کے پروجیکٹ بنائیں، ان کے ڈیزائن اپنی مرضی سے بنائیں، اور پاکستان کو کیا چاہیے ہے؟ صرف ان کو یہ چاہیے نا کہ جو پانی اوپر بن رہا ہے وہ پانی صرف نیچے آئے، لیکن ہمیں ڈیم بنانے میں ہم پر قدغن جو ہے وہ نہ لگائی جائے۔ اور میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ ان کے ناریمان اور مسٹر شنکر داس جو بہت بڑے پائے کے وکیل تھے، ناریمان تو میں نے اس دنیا میں نہیں رہے، شاید شنکر داس ابھی ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا، یہ جب بگلیار کا ایشو ڈیوٹل ایکسپرٹ کے پاس ڈسکس ہو رہا تھا، ان کا جی یہ پاکستان کو چھوڑ دینا چاہیے، جو خدشات ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یا ڈیزائن کیا ہے، ان کو جب ٹریٹی کی پروویژن ہے کہ ہفتے کا پانی جو اوپر آئے گا ہفتے کا ہم نے انڈیا نے نیچے دینا ہے، تو پھر ان کو تو تردد نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹریٹی کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے، کیونکہ ہم نے 3 دریا 29-30 ملین ایکڑ فیس پیسپیچل فلو دینے کے بعد یہ ٹریٹی حاصل کی تھی، تب ہمیں یہ 3 دریا ملے۔ اب اس پر بھی جو کسی قسم کی انٹروینشن ہو تو ہمارے لیے وہ قابل قبول نہیں تھی۔ اچھا، اب 1970 میں انڈیا نے ایک پروجیکٹ شروع کر دیا چناب ریور پر، سلال ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ، جو کہ ہیڈ امرالا سے تقریباً 125 کلومیٹر جو ہے اپ سٹریم ہے۔ اچھا، یہ سب سے پہلا ہائی ڈیم تھا، 350 فٹ اونچا، اس سے پہلے جتنے بھی انڈیا کے ڈیم ان دریاؤں پہ تھے وہ 30-40-50 فٹ اونچے تھے، تو اس وقت میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس کی ہائی ڈیم پر پاکستان کو آبجیکشن کرنی چاہیے تھے، لیکن پاکستان نے ہائی ڈیم پر تو نہیں کیے، لیکن ان کے گیٹس پر یا ان کے جو لو لیول آؤٹ لیٹس ہیں ان پر انہوں نے آبجیکشن ریز کیے، کمیشن آپس میں اس ایشو کو حل نہ کر سکی، اور الٹیمیٹلی آغا شاہی صاحب تھے فارن سیکرٹری، اور 1978 میں یہ ایشو جو ہے یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پر جو ہے یہ حل ہو۔ اب یہ ایک ہائی ڈیم کی ایک پریسیڈنس بن گیا۔ اب نیکسٹ پروجیکٹ جو ہے چناب پر جو ہے یہ تقریباً 100-150 کلومیٹر مزید اوپر جو ہے سلال ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ کے، یہ انڈیا نے 92 کے اینڈ میں جولائی میں کہیں پروپوز کیا کہ وہاں پر ایک ڈیم بنانا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان سے ڈیزائن مانگا، ڈیزائن پہ ہم نے آبجیکشن ریز کر دیے، 5 جو آبجیکشن تھے وہ ہمارے ان کے ساتھ وہ چلتے رہے، لیکن 96 میں جو ہے میں نے وہاں پر وزٹ کیا اور وہاں جگہ کوئی پروجیکٹ ابھی تک بنا نہیں تھا، تو اس وقت یہ بھی شور تھا کہ یہ علاقہ سیزمک میں آتا ہے، ایکٹیویٹی ہے تو شاید یہ اس کو ڈیم کو سکریپ کرتے، لیکن انڈیا نے الٹیمیٹلی ہم اس کے بعد اس پر مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں تو اپنے جو ہمارے ادارے ہیں یا جس طرح بھی، لیکن انڈیا نے اس کو 1999-2000 میں جو ہے نا وہاں پر تھوڑی سی کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع کر دی، اور ہم نے ڈسکشن میٹنگ کی کمیشن میں ڈیبیٹ ڈسکشن شروع کر دی، اور یہ 2000 میں نے ایز اے کمشنر یہ لکھ دیا کہ میں نیوٹن ایکسپرٹ کے پاس جا رہا ہوں، ہم نے 4-5-6 میٹنگ کر لی ہیں، آپ جو ہے وہ کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لہذا ہم اب جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ کمیشن میں بیٹھے رہیں اور آپ اپنا کام کرتے ہیں۔ انڈین کمشنر کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو جو ہے ریزالو کر لیں گے تو آپ نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس نہ جائیں، لیکن میں نے گورنمنٹ کو کہا کہ یہ ٹائم بائی کریں گے، تو میں نے ان کو پروپوزل دی کہ ٹھیک ہے میں 10 سال آپ کے ساتھ میٹنگ کرنے کو تیار ہوں، لیکن کام آج آپ سسپینڈ کر دیں اور جب ریزولوشن ہو جائے گا تو آپ بنا لیں، لیکن انڈیا اس پر نہیں مانا، اور پھر میں نے نوٹیفائی کر دیا گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی کہ میں نیوٹرل ایکسپرٹ کی جو کلاز ہے ریزولوشن آف ڈفرینسز آن دی ڈیزائن آف دی پروجیکٹ اس کے لیے نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے، اور ہم نے 3 نام دے دیے کہ یہ نیوٹرل ایکسپرٹ ہم اپائنٹ کر رہے ہیں، انڈیا نے بھی 3 نام دیے لیکن کوئی اگری نہیں ہوا، تو پھر الٹیمیٹلی ورلڈ بینک کے پاس گئے، انہوں نے جو پینل دیے اس میں سے جو ایک نام تھا وہ اپروو ہو گیا، لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے اس میں ظاہر ہے کہ ٹائم لگتا ہے۔ اچھا، جب یہ ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے، और दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला प्रोजेक्ट था जो कि एक थर्ड पार्टी के पास जा रहा था और इंडिया को बड़ी ये तकलीफ थी कि ये ट्रीटी के बाहर जाकर न्यूट्रल एक्सपर्ट जो कोर्ट आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे हम एक्सपोज होंगे इसमें, तो उनकी ये कोशिश थी। और चीफ एग्जीक्यूटिव साहब उस वक्त मुशर्रफ साहब तशरीफ ला चुके थे, तो उनसे भी ब्रजेश मिश्रा उनको कहीं मिले, उन्होंने कहा जी ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट का जो इनके कमिश्नर और मिनिस्ट्री वाटर पावर ने कहा हुआ है, मेरा ख्याल है ये बात ही नहीं चाहिए और इसको मिलकर हल करना चाहिए। तो उस वक्त क्योंकि जब भी माशाल्लाह आता है, जब फौजी हुकूमत आती है तो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो जरा थोड़ी सी सहम जाती है, तो इसी तरह हमारी जो भी वाटर सेक्रेटरी थे वो जरा मुशर्रफ से इंटरेक्ट नहीं करते थे, फॉरन ऑफिस के थ्रू करते थे और फॉरन ऑफिस के पास बेशुमार और सब्जेक्ट होते हैं। उस वक्त 7-8 और इश्यूज थे, सियाचिन का था, सरक्रीक का था, उसमें ट्रेड का था, उसमें टूरिज्म के थे, तो 7-8 मसाइल थे, तो वो भी थोड़ा सा रिलेक्टेड होते थे कि एक और इशू इसमें ऐड हो जाएगा। तो मुशर्रफ साहब के जरिए को जो है फॉरन ऑफिस के जरिए हमें मैसेज मिला कि हमने उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट हैज कैटेगरिकली टोल्ड वी आर नॉट गोइंग टू द न्यूट्रल एक्सपर्ट। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा जी हमारा ये प्रोजेक्ट हम इंडिया को नोटिफाई भी कर दिया है, तो वो कहते हैं कि जाना नहीं है उसमें जो है हमने न्यूट्रल एक्सपर्ट के बाद। तो वहां वो एकदम जो है ना उसके बाद सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज जो है हमारे वाटर एंड पावर चेंज हो गए, ये सेक्रेटरी तो फिर मैंने पुश किया, मैंने कहा जी ये तो बड़ा मसला बन जाएगा हमारे लिए फ्यूचर में, क्योंकि जब इंडिया का जो डिजाइन है वो हम समझते हैं कि अगर वो ऑपरेशन सही करे तो फिर तो ठीक है, लेकिन इन वायलेशन ऑफ ट्रीटी अगर ये इसको ऑपरेट करता है तो फिर हमारे पानी जो है ना मराला पर हेडवर्क्स पर ये पानी कम होने का अंदेशा है, और एग्रीकल्चर यूजेस के अलावा मराला रावी लिंक, बंबा वाला रावी, बेदियां, दीपालपुर कैनाल, मैंने कहा ये डिफेंस ऑब्स्टेकल्स भी हैं, ये फ्रॉम आर्मी प्वाइंट ऑफ व्यू भी हमें इसमें 6 फुट पानी हर वक्त रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जाहिर है कि हम ये सब इन इदारों से जो है ये मिलकर हम काम करते हैं। तो लेकिन ये है कि अल्टीमेटली सेक्रेटरी साहब ने हमने एक मीटिंग की चीफ एग्जीक्यूटिव साहब से रावलपिंडी में मुशर्रफ साहब से, और मुशर्रफ साहब को समझ आ गई कि वाकई ये बात सही कर रहे हैं, उन्होंने फिर हमें कहा कि आप इसमें चले जाएं, बट इट टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर, जिसका मतलब है एक साल जो पहले एक्शन होना था एक साल
जो
अच्छा अब ये था कि जब कंफर्म हो गया न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए कि हमने जाना है तो इंडिया ने एक और चाल चली, उन्होंने कहा जी हम गवर्नमेंट लेवल टास्क जो है ना उसमें रेजोल्यूशन के लिए जो है ना हमें एंडेवर करना चाहिए, उन्होंने फॉरन ऑफिस को खत लिख दिया, उन्होंने कहा सेफ्टी टू सेफ्टी लेवल टास्क करें।
मैं आपको यहाँ रोकूंगी, इसका मकसद है कि जो उन्होंने न्यूट्रल एम्पायर को छोड़ के कंट्री टू कंट्री टॉक में आ गए तो न्यूट्रल एम्पायर इसमें ऑफेंड नहीं हुआ?
नहीं, न्यूट्रल अपॉइंट का तो जो प्रोसेस है ना जी, अच्छा। वो अभी प्रोसेस यानी कि उसको केस,
अच्छा
ट्रीटी ये कहती है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास केस लगने तक दोनों गवर्नमेंट भी इशू को आपस में रिजॉल्व कर सकती है।
ठीक है
जी, क्योंकि हम तो चाहते थे लेकिन इंडिया हमें स्टॉप करता था कि न्यूट्रल एक्सपर्ट का प्रोसेस ना चले।
ठीक
तो दौरान उन्होंने ऑफर दी गवर्नमेंट को कि जी हम सेफ्टी टू सेफ्टी लेवल टॉक्स कर लेते हैं, वो फिर लेते हैं फॉरन ऑफिस को लेकर लिखते हैं। तो जब मुझे उन्होंने बताया कि जी इस तरह है क्या ख्याल है, मैंने कहा जी ये टाइम बाई कर रहे हैं, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी हमें जो उन्होंने ऑफर दिए हमने एहसास तो हमें करनी चाहिए, वगरना वर्ल्ड बैंक को हम क्या जवाब देंगे कि कमीशन लेवल पर अगर नहीं हुआ हो सकता गवर्नमेंट लेवल पर हो जाए और फिर वर्ल्ड बैंक कहेगा कि या आपने उनकी बात नहीं मानी और आप इधर आ गए, आपने पूरे जो पैरामीटर ट्रीटी में दिए हुए हैं ये एग्जॉस्ट नहीं किए, आप यू गो बैक एंड गवर्नमेंट लेवल पर डिस्कस करें जाकर। तो ये भी एक थोड़ा सा जेन में रहता था। बहरहाल सेक्टरी लेवल टास्क हुए 2-3 और उसमें कोई नतीजा ना निकला, और मैंने फिर गवर्नमेंट को कहा कि मैंने आपको ये पहले कह दिया था कि इंडिया इज बाइंग टाइम, प्रोजेक्ट उनका शुरू है और सस्पेंड भी नहीं कर रहे, तो ये किस तरह ये मुमकिन होगा? तो वो फेलोर डिक्लेयर कर दिया गया कि जी गवर्नमेंट भी आपस में फैसला नहीं कर सकी। तो अब आप जाहिर है कोई ऑप्शन नहीं था कि अब न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है उनका फाइनल कॉल उसके दे दी जाए, लेकिन दरमियान में फिर इंडिया ने यह कह दिया कि آپ ایک ہمیں چانس دے دیں کمیشن لیول کا. تو دونوں کمیشنر بیٹھ جاتے ہیں, تو اس مسئلے کو دوبارہ ہم اس کو ریزالو کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے فارن آفس نے کہا تھرو منسٹری آف واٹر پاور, تو میں نے انہیں گزارش کی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہم کافی ٹائم اس پر ویسٹ کر چکے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ایک دفعہ دیکھ لیں ایک ہفتے کے بعد. میں نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں, لیکن میں نے کہا جو بات یہ ہے اس میں میرے تین جو ہے نا یہ پوائنٹ ہیں. نمبر ایک, انڈیا ہمیں وزٹ نہیں کروا رہا, سٹیٹس کیا ہے پروجیکٹ کا. نمبر ٹو, انڈیا جو ہے یہ کام سسپینڈ کرے جب تک ہمارا ریزولوشن نہیں ہو جاتا, اور یہ کنفرم کرے کہ جب تک ہمارا ریزولوشن نہیں ہو جاتا اس وقت ہم کام جو ہے دوبارہ شروع نہیں کریں, اور ہمیں میٹنگ بھی ہے وہ کمیشن کی جو ہے اور وزٹ بھی کروائیں وہاں پر سائٹ کا. اچھا, یہ میں نے جب یہ تین پوائنٹ ان کو دے دیے, تو یہ تین پوائنٹ انہوں نے فارورڈ کر دی, اور تقریباً 10-15 دن بعد ہی جواب آ گیا. فارن آفس نے کہا جی فلاں تاریخ مقرر ہو گئی ہے, آپ انسپیکشن کریں جا کر وہاں پر, اور پروجیکٹ کا سٹیٹس بھی دیکھیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بات یہ ہے, یہ اس سے کمیشن کی میٹنگ میں تو کچھ نکلنے والا نہیں, مطلب اتنی ہائی لیول میٹنگ میں کچھ نہیں نکلا, تو کیا انہوں نے جو آپ نے درخواست کی تھی کام کو سسپینڈ کریں ٹل نیگوشیشن شروع ہوتی ہیں اور مکمل ہوتی ہیں, کہتے ہیں وہ تو ان کا جواب ان کا نہیں آیا. میں نے ان سے جواب لیں, انہوں نے کہا آپ کمیشن کی میٹنگ تو کر کے آئے, کمیشن کی میٹنگ میں کر کے آیا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, ٹائم ویسٹ کیا, اور الٹیمیٹلی میں کہتا ہوں تقریباً 2 سال اس پروسیس میں ہم پھنسے رہے, اور الٹیمیٹلی پھر نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہے اپوائنٹ ہو گیا اس کو 2005 میں. دیکھیں 2002-03 میں یہ سلسلہ چلا ہے, اگر یہ رکاوٹیں جو ہے ہمیں میں سمجھتا ہوں یہ رکاوٹیں تھیں یا وٹ ایور. اچھا, 2005 میں جب اٹارنی جنرل صاحب کے ذریعے ہم نے لیٹر بھجوایا ورلڈ بینک کو, تو ورلڈ بینک نے ہمیں جواباً یہ بھیجا کہ آپ ثابت کریں کہ سفیشنٹ انڈیور ہیز بین میڈ بائی پاکستان ٹو ریزالو دس ایشو. کوئی بات بنی کمیشن میں کیا ہوا, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول ٹاکس ہوا, ہم نے وہ سارا ان کو ایشو ان کو سارا جب یہ ڈاکومنٹ دیے تو وہ مطمئن ہو گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ انڈیا نے کہا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے ساتھ ریزالو نہیں کرتے. تو جب ہم نے یہ میٹیریل دیا تو ورلڈ بینک مطمئن ہو گیا, اور انہوں نے نیوٹرل ایکسپرٹ اپوائنٹ کرنے کا پروسیجر شروع کر دیا, جو کہ پھر 6-7 مہینے کا کام ہے.
سر میں آپ کو یہاں پہ 1 منٹ کے روک کے کمرشل ایک بریک لے لوں, اور میں یہاں یہ بتانا چاہتی ہوں یہ معاملہ وہ تھا جو 1996 سے شروع ہو کے 1999 سے ہوتا ہوا پرویز مشرف کے دور میں, اب ہم 2005 میں کھڑے ہیں, اور جناب سید جماعت علی شاہ ذاتی طور پر ورلڈ بینک تک بھی پہنچ جاتے ہیں اس مسئلے کو لے کے, اور ورلڈ بینک نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ تمام کے تمام جو مراحل ہیں ان کو پورا کیا گیا. اس گفتگو کو آگے سنیں گے, ول ٹیک سم کمرشلز اینڈ کم بیک. سر آپ کو برا نہ لگے کیونکہ وی ہیو ٹو ٹیک ا لٹل بریک فار دیٹ. بہت شکریہ آپ لوگوں کے پروگرام سننے کا, اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ ہمارے اسپانسرز کو ضرور تعاون دیجیے گا, اس کے لیے ہم آپ کے بڑے ممنون اور مشکور ہوں گے. چند اسپانسرز, ول کم بیک پلیز اسٹے ٹیونڈ. Painters of GTA for your home paint or office paint, interior or exterior, popcorn ceiling ko remove. Water damage, if there are yellow spots in ceiling, call Painters of GTA. Water damage mein agar yellow spots aapki ceiling pe unko remove karke bedagh karenge. Texture style painting, which is the latest Italian style painting. Ya wallpaper lagwana chahte hain to call kijiye texture style painting ke liye Painters of GTA 6472711974. Mohammed Saleem 6472711974.
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس ایل ای ڈیز اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے. تو انتظار کیسا, ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن 280 ردرفورڈ روڈ یا اسپرنگ ڈیل اسکوائر شاپنگ سینٹر یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ یا 9909 مارکم روڈ. مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 905-455-1666. ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس.
घर तक पैसे भेजना कभी आसान नहीं रहा है। आपके हाथों से इंडिया में बैठे आपके अपनों तक सिर्फ कुछ टैक्स के साथ। जी हाँ, जब आपकी फैमिली को हो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत, तब टैप टैप सेंस देता है आपको ग्रेट कम्पेटिटिव एक्सचेंज रेट। ना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स की चिंता, ना कोई हिडन फीस का डर, जस्ट हमारा इजी टू यूज ऐप और पैसे सीधा घर।
डाउनलोड आवर ऐप एंड यूज प्रोमो कोड रेडियो 20 टू गेट एन एडिशनल $20 ऑन योर फर्स्ट सेंड ऑफ $200 और मोर। टैप टैप एंड सेंड।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा, 4168945872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट विल बी ऑन ए चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ। 4168945872।
और हर ट्यूसडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हो।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 4167928792।
Ringing, buzzing, hissing, time to get your hearing check.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने का। मेरे साथ जनाब सैयद जमात अली शाह साहब मौजूद हैं। बड़ी तफसील से आपके साथ शेयर किया कि व्हाट इज इंडस वाटर प्रोजेक्ट और मतलब जो मंसूबा था सिंतास मुहिदा क्या था, और फिर उसके बाद हम इस वक्त खड़े हैं कि अल्टीमेटली जनाब एज ए कमिश्नर ये शामिल होते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत होती है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व किया जाता है। अब यहां से अगला जो मसला शुरू हो रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। से जमात अली शाह साहब, इसका मतलब है कि 1996 में यानी हिंदुस्तान पहले छोटे डैम्स बनाता था, फिर इन्होंने एक डैम बनाया 350 फुट बुलंदी पे, फिर 450 फुट की बुलंदी का, और अब जब ये हुआ तो इट वाज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। उसके बाद जो हुआ लिंगर करता करता ये 2005 तक पहुंच गया। जी सैयद जमात अली शाह साहब, सर
बहुत शुक्रिया जी। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जो ये बगली और चनाब की हम बात कर रहे थे, इस पर जो ये रुकावटें आई, तो मुझे जनरल अहमद खान होते थे चीफ ऑफ स्टाफ इनके, जनरल मुशर्रफ साहब के, तो उन्होंने मुझे कहा जी आप हमें प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि हम पुश कर रहे थे और कुछ लोग उसको रोकना चाहते थे। वो लोग रोकना इसलिए चाहते थे कि इस मसले को थर्ड पार्टी के पास ना ले जाया जाए। उन्होंने जब उन्होंने बुलाया तो मैंने उनको ये बताया, फिर उनको जो वेट ऑफ स्टेकल और जो हमारी डाइल्यूट होती हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो आर्मी के आदमी थे, मैंने कहा एग्रीकल्चर यूज का तो हमें लाश हो गई, लेकिन ये वेट ऑफ स्टेकल जो है ये भी डाइल्यूट होंगी। तो उस वक्त उनको बात समझ आई, तो फिर मुशर्रफ साहब ने हमें कहा कि इस पर हमें जाना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं कर अब न्यूट्रल एक्सपर्ट होने के बाद उसका एक प्रोसेस था, दोनों पार्टियों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जमा कराया, फिर डिबेट डिस्कशन, और अल्टीमेटली जो है 2007 में उन्होंने अपना जो है ये डिसीजन दे दिया, और उसमें हमारे 5 पॉइंट थे, 3 पॉइंट पाकिस्तान के हक में दे दिए और 2 पॉइंट जो है वो इंडिया के हक में दे दिए। तो जब इंडिया के हक में उन्होंने 2 पॉइंट दिए तो मुझे उस वक्त मालूम हुआ ये दुनिया में इंसाफ नहीं है कहीं भी। ये इट्स ऑल मैटर ऑफ लॉबिंग। जो हमारा केस बड़ा क्रिस्टल क्लियर था, और जो मेजर इशू था कि गेट्स जो नीचे थे हम चाहते थे कि ऊपर चले जाएं, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट ने उनके हक में दे दिया, लेकिन चूंकि हमारे हिस्से में 3 पॉइंट आए थे, 2 उनके फेवर में आए थे, तो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम ये केस जीत गए हैं। लेकिन जितो साहब मिनिस्टर होते थे, शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मुशर्रफ साहब जो है वो सदर थे, तो मुझसे जब पूछा गया, मैंने कहा जी हम केस हार गए हैं, उन्होंने कहा जी वो कैसे हार गए हैं, मैंने कहा जी मेरा जो इशू था सबसे बड़ा ये गेट्स का था, बाकी ठीक है अल्लाह की मेहरबानी से 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं। तो उन्होंने कहा अजीब बात है, हम सब कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है हम केस जीत गए, आप कहते हैं कि नहीं, तो आप जो है, मैंने मैंने कहा जी ये जो इशू है गेट्स वाला, इसमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जाना चाहिए। बाकी ठीक है, हमें जो तीन मिल गए हैं, जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्होंने कहा ठीक है मशावरत करें आप। तो हमारी जो टीम थी जेम्स क्रॉफोर्ड, जो यूके के बहुत बड़ा नाम है, कहते हैं कि जेम्स क्रॉफोर्ड जिस पार्टी का केस ले और वो केस हार भी जाए वो कहते हैं कि इसमें जेम्स क्रॉफोर्ड है, अगर हार गए तो कोई बात। तो उनसे मैंने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए क्योंकि मैं कोर्ट ऑफ रिप्रेशन में जाना चाहता हूं। उनका बात यह है कि इस पर बड़ी लहदे हुई है, ये पहला आपका इशू है जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट के पास गया है, इस पर बड़ी अपोजिशन थी। अब हम न्यूट्रल एक्सपर्ट के डिसीजन पर अगर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान का काम है रोड़े अटकाना, इंडिया का प्रोजेक्ट रोकना, और जो न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कह दिया है उसके हुक्म को ना मानना। तो आप ऐसा करें कोई फ्यूचर में जो इमीडिएट प्रोजेक्ट आता है उस प्रोजेक्ट पर आप डायरेक्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले जाएं, क्योंकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्टे दे सकती है, न्यूट्रल एक्सपर्ट स्टे नहीं दे सकता क्यों, ये टेक्निकल इश्यू सिर्फ लेता है। तो वो कहते थे कि आप जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले जाएं तो इसको फिलहाल ड्रॉप कर दें आप, ये हमें जो मिल चुका है ये सफिशिएंट है, पानी में इसकी रुकावट नहीं आती, अगर ये डिजाइन में इसमें मामूली सी चीजें हैं तो कोई ऐसा इसमें इश्यू आने वाला नहीं है। एक्सपर्ट्स भी इसी बात के उनका ओपिनियन था कि इसके बनने से पानी की रुकावट नहीं आएगी क्योंकि ये बिजली बनाने का मंसूबा है। इंडिया ये तो नहीं ना कि पानी रोककर अपनी 900 मेगावाट बिजली जाया करेगा तो पानी हवा में वो मिलता रहेगा। लेकिन मेरे जहन में ये था कि इन केस ऑफ माल ऑपरेशन अगेंस्ट दी टीटी प्रोविजन कोई जो हमारे खदशात हैं वो भी दूर हो जाएं। तो जेम्स क्रॉफोर्ड ने कहा जी खदशात के बिना पर इशू नहीं बनते, केस नहीं बनते, तो लिहाजा आप जो है अभी सबर करें। अच्छा अब यह है कि 2012-13-14 में ये एक इश्यू आ गया किशनगंगा का, सॉरी 2012 की नहीं बात कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूं 9-10-11 में, ठीक है, क्योंकि 2008 में इसका फैसला आया, 2009 में तकरीबन जो है इंडिया ने किशनगंगा के ऊपर, जो कि किशनगंगा का एक ट्राइब्यूटरी है जो नीलम इसको रिवर कहलाते हैं, हम ये मुजफ्फराबाद आकर मिल जाता है दरिया जेलम से, दरिया जेलम बुलर लेक से आ रहा है श्रीनगर से, ये दोनों आपस में मिलकर मंगला में आ जाते हैं। ये इंडिया ने हमें एक प्रोजेक्ट जो है ये दिया कि हम इस पर अपना एक प्रोजेक्ट बना जाते हैं पावर का, और उसमें कुछ लिमिटेड एक स्टोरेज भी है, 0.16 मिलियन एकड़ फीट की स्टोरेज थी इसमें। अब ये प्रोजेक्ट जो है हमें इसकी जो भिनक पड़ी थी शुरू में, हमें इससे बहुत पुरानी तकरीबन 89 में पड़ चुकी थी, और मैंने गवर्नमेंट को उसको कहा था कि ये ट्रिब्यूटरी जो है नीलम जेलम की है और इस पर ट्रीटी की एक एक्सक्लूसिव प्रोविजन है कि जो आदमी जो पार्टी पहले बना देगी तो दूसरी पार्टी फिर उसके जो इफेक्ट्स हैं एडवर्स उसका केस नहीं कर सकती। तो मैंने गवर्नमेंट से कहा कि हमें आजाद कश्मीर में नीलम पर कोई प्रोजेक्ट बना देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल शायद गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं थी उस वक्त कि हम एजेके में कोई प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन मैं उनको पुश किया कि ये हमारा राइट बन जाएगा हम अगर करेंगे, इंडिया फिर नीलम जेलम नहीं बना सकता फ्यूचर में। तो उस पर हमने बड़ी कोशिश के बाद FWO से छोटी सी एक टनल बनाकर इंडिया को हमने इन्वाइट किया, हमने उनको दिखाया कि जी आपका प्रोजेक्ट जो है वो अगर बनाएंगे तो ये हमारा तो आज शुरू हो चुका है, आपका तो प्लानिंग स्टेज पे अभी। तो उन्होंने आकर देखने के बाद जाकर वेरीफाई किया, उन्होंने कहा जी ये तो सिर्फ ऐसे आपने एक एक्सप्लोरेटरी टनल लगाई है, इस पर काम तो कोई ज्यादा नहीं। मैंने कहा काम यह है कि सामने आपकी LOC बड़ी वोलेटाइल है, वैसे लोग अट्रैक्ट नहीं होते, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके साथ हमने काम शुरू कर दिया है, लेकिन ये हमारा प्राइवेट का इशू बनता है। वो बहरहाल अल्टीमेटली उन्होंने जाकर जो है अपना फाइनल कर दिया और हमें उसका हमें डिजाइन दे दिया, उस डिजाइन पर फिर हमने ऑब्जेक्शन रेज कर दिए और वो ऑब्जेक्शन तकरीबन 6 साल चलते रहे, और उसके बाद इंडिया ने स्टोरेज के बजाय इसको रन ऑफ रिवर बना दिया, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट नीलम जेलम में नहीं बना। और उसके बाद जब उनका प्रोजेक्ट तकरीबन आधे से ज्यादा बन चुका था तो फिर जाकर नीलम जेलम जो है पाकिस्तान ने शुरू किया। अब जाहिर है कि ये जो है इन चीजों को ट्रीटी के प्रोविजन को लेकर एक पुश करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं और उन प्रायोरिटीज में जो है वो कमिश्नर का जो है अमल दरामद या दखल जो है वो तो फिर जाहिर है कि लिमिटेड रह जाता है, क्योंकि हमारा काम तो यह है कि प्रोजेक्ट करना, ये ट्रीटी के प्रोविजन है, अगर ये बुरुए कार नहीं लाएंगे तो आपका इसका नुकसान होता है। बहरहाल वो जैसे ही केस आया तो मैंने फिर जेम्स क्रॉफोर्ड से रब्ता किया जो हमारे वकील थे। मैंने कहा जी आपने फरमाया था कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आप डायरेक्ट चले जाना, वो स्टे दे देंगे और काम बंद हो जाएगा, और इसके साथ डिजाइन भी है, उसकी डिफिकल्टीज भी है, वो एक टेक्निकल इशू भी है और लीगल भी है। लीगल ये है कि डायवर्शन नहीं कर सकते, और डायवर्शन करेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी आएगा नीलम वैली। उसने कहा बात आपकी ठीक है कि ये लीगल भी बनता है टेक्निकल भी है, लेकिन जेम्स क्रॉफोर्ड ने कहा जी आप मेरा जो ख्याल है उन्होंने कहा वो कहते हैं कि आप इसको न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास लेकर जाएं और वो जो टेक्निकल इश्यू है वो रिजॉल्व कर देगा, जो नॉन टेक्निकल है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में रेफर कर देगा क्योंकि टीटी में प्रोविजन है। मैंने कहा जी जो बात आपने पिछले साल मुझे कही थी तो वो उसके तो आप ये बिल्कुल बरक्स कर रहे हैं। उन्होंने फिर मैं कहा कि जी इट विल बी योर पॉलिटिकल डिसीजन। मैंने कहा ठीक है जी मैं इसके दो से बनाऊंगा, डायवर्शन का मैं दे जाऊंगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ताकि मैं स्टे लूं, और टेक्निकल जो है इसके लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट में अपॉइंट करूंगा। मैंने दोनों इंडिया को दोनों तरफ ये लेटर लिखी थी। मैंने कहा ये जो टेक्निकल क्वेश्चन है इसके न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट का नोटिस देता हूं, और जो लीगल इशू है एनवायरमेंटल और डायवर्शन इसके लिए मैंने कहा जी मैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का आपको नोटिफाई करता हूं। ये मैंने नोटिफाई कर दिया और उसके बाद हमने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए एंडेवर शुरू कर दिया। वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए जाहिर है कि 7 मेंबर कोर्ट होती है, और जब मैंने नोटिस दिया तो हमने 2 वकील जो थे इंटरनेशनल लेवल के ढूंढ कर वो साथ 2 देने पड़ते हैं नाम, वो हमने 2 नाम भी दिए आफ्टर सारी जो है ना सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद, ये हमारा केस है और ये हमारे 2 वकील हैं। इंडिया को उन्होंने कहा, इंडिया ने 2 वकील उनको दे दिए, 4 हो गए। 3 जो है वो मुख्तलिफ इदारे हैं, 2-2 इदारे हैं, वो नाम देते हैं, तो वो 3 वो नाम देंगे तो 7 की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बन गई। वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो है फैसला 2013 में दे दिया, लेकिन मुझे 2009 में पीपल पार्टी जब बरसर इकतदार आ गई 2008 के आखिर में या 2009 में, 2008 तक जमात अली शाह चैंपियन था, और 2009 में जब पीपल पार्टी आ गई उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना कमाल मजीदुल्लाह साहब ले आए, और उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आप सारा कुछ मेरे हवाले कर दें, डॉक्यूमेंट्स भी, पैसे भी, रकम भी, और हम इसको और वकील भी हम अपॉइंट करेंगे। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ऑल डेली पार्टी इन्वॉल्व है जेम्स क्रॉफोर्ड, लेकिन उन्होंने अपने वकील का कहा ये देखेंगे। मैंने कहा जी नहीं, हमने ये बड़ी एंडेवर करके 1.5 साल बाद अपने इदारों से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेकर ये लोग रखे हैं, लेकिन वो मेरे खिलाफ हो गए और मुझे जो है 12 दिसंबर 2010 को मुझे OST बना दिया, यानी कि डेढ़ साल उनको लगा मुझे OST बना सके। मैं ये कहना का मकसद यह है कि मेरी इतनी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन थी महकमों के साथ, चाहे लॉ एंड जस्टिस है, वाटर एंड पावर है इसमें, चाहे हमारे इदारे हैं या एजेंसी है।
बहुत सर मैं यहाँ पे एक सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कर सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि मगर आई वॉज लुकिंग एट दी ऑल द रिपोर्ट कि आपने थ्रू आउट इदारों को इन्वॉल्व रखा और आप 1996 से लेके आपने वर्ल्ड बैंक को भी इन्वॉल्व किया, यानी 100% तो कहीं भी अगर फतह ना पाई मगर 3-2 का फैसला भी ले लिया। मगर ये जब 2012 का वाक्य आता है तो इंटेलिजेंस हमारी FIA को क्या हो गया था कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आपके अगेंस्ट चली गई कि आपने, बल्कि मुझे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो आप बता दीजिए कि ये निमू बाजगू डैम कौन सा था जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जिसमें वाटर स्टोरेज जो थी 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 यानी इतना क्यूबिक मीटर पानी इंडिया स्टोर कर सकता था, तो ये डैम कौन सा था? और आपने इदारों को साथ लेके इन लोगों से मुलाकात की, जाहिर है जिसमें आपका न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट का भी मामला आया, तो क्या ऑल द ऑब्सर्वन हो गया था कि जो हमारी जो ISI और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की एजेंसी थी, यानी उनको भी आपके अगेंस्ट बखा दिया गया?
नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये सारी हेयर से है, ये सारी मीडिया की रिपोर्ट है। ये मैं बताऊं कि जब जैसे कमाल मजीदुल्लाह साहब आए, वो मेरे खिलाफ हो गए।
अच्छा,
जब मेरे खिलाफ हो गए तो मैंने रिजिस्ट किया, क्योंकि मैं भी ड्राई एरिया का रहने वाला हूँ, जेलम का रहने वाला हूँ।
अच्छा,
मैंने रिफ्यूज कर दिया। और उस पर मेरी कई बार एक्सप्लेनेशन की, उस वक्त बाबा रवान साहब थे लॉर्ड जस्टिस के मिनिस्टर, उनके सामने पेशी की गई, वहां पर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। और उन्होंने, बाबर साहब ने कहा, शाह साहब मैं कुतुब शाही मलक हूँ, सादात का गुलाम हूँ, यू आर रियली एसेट फॉर अस। ठीक है जी। उसके बाद बाबर साहब, अवान साहब भी बाहर हो गए, और उन्होंने राजा परवेश अशरफ साहब को जो है वो उन्होंने कहा जी हमारे वकील लगाए जाएं। राजा साहब ने ये मीटिंग की, और वो कमाल मजीदुल्लाह और वो लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के आए, तो राजा साहब ने अल्टीमेटली ये फैसला किया। दो दिन मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि जेंटलमैन, जो टीम ऑलरेडी काम कर रही है जेम्स क्राफ कोर्ट की, जो जिस पर अप्रूवल भी ऑलरेडी है प्राइम मिनिस्टर की, उस वक्त गिलानी साहब थे, वो ही चलेगी। तो उस बार मेरे खिलाफ हो गए, और मुझे जब OSG बना दिया गया, तो कमाल मजीदुल्लाह साहब ने सैयद खालिद मुस्तफा साहब रिपोर्टर थे न्यूज में, मोहम्मद मालिक चीफ एडिटर थे न्यूज के, मुझे इसी तरह जानते थे, मेरे पास घर में आए थे कई बार। ठीक है जी, एक अखबार। अच्छा, और उन्होंने, कमाल मजीदुल्लाह ने सैयद खालिद मुस्तफा को साथ लेकर हेलीकॉप्टर में नीलम वैली लेकर गए, उनको दुबई लेकर गए, उनको खानों पर लेकर गए। मैं वो आदमी जो साथ था, उसने मुझे बताया, अरशद एच अबासी, मैं नाम भी आज बता रहा हूँ, कि मैंने पहले ये बातें पहले नहीं की जो मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने कमाल मजीदुल्लाह का नाम भी कभी नहीं लिया, मैंने वो जो शमैला महमूद का नाम भी कभी नहीं लिया, जो कि UK से लेडी आई थी, और वो इनके साथ जो है ये सारे ये कनेक्शन आए, जो कि जरदारी साहब के पुरवर्दा लोग थे। मुझे जरदारी साहब पर गिला नहीं है, लेकिन मुझे उनके एडवाइजर पर, वो जो लोग लाए थे उन पर मुझे ये गिला था। आप बातें आपने ये बात की, जब ये जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये सारी कहानियां हैं, ये खालिद मुसलमान लिखा जी जमात अली शाह भाग गया, अपना हो गया। भाई मैं तो कनाडा में आई हूँ रिटायरमेंट के बाद, मैं 11-12 अक्टूबर 2011 में आया हूँ, और 12 या 2 दिसंबर को मीडिया में आ रहा है। इनकी इतनी हिम्मत थी, तो जब मैं मौजूद था सर्विस में, उस वक्त ये बात करते ना। इवन देन मैं 6 महीने, मैं आया था मार्च के लिए, मैं फरवरी में वापस गया हूँ, और रहमान मलिक साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में, किसी ने पूछा जमात अली,
वो भी मर गए,
और उन्होंने कहा जी मैं इंटरपोल से लाऊंगा। तो मैंने लाहौर जाकर फरवरी 2012 को मैंने कहा जी जमात उनको बता दें कि मैं इधर खुद आ गया हूँ, आपका काम मैंने आपका कर दिया, अब आप बाकी काम आप कर लें जो आपने करना है। देयर वॉज नथिंग अगेंस्ट कि मेरा नाम ECL पे था, देयर वॉज नो केस इन FIA, देयर वॉज नो केस इन सुप्रीम कोर्ट या ब्लैक। मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर किसी के पास सबूत हैं, तो मैं आज भी नैब, FIA, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ, और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि कुछ पार्ट ऑफ फी अगर उस किसी की लगती है, तो वो भी मैं अपने उस हिस्से, अपनी जो है पेंशन से अदा करूंगा। और मैं कहता हूँ पहले नोटिस पर मैं I will be there with the court। ये ऐसी बात नहीं है, बाकी निमोबादों की प्रोजेक्ट है वो इंडस पर है, और इंडस पर है, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आई थी, उसको प्रॉपर हमने टेकअप किया था, उसका प्रॉपर जो है वो इस तरह की कोई इसमें जोड़ नहीं है। और कमाल मजीदुल्लाह ने उसके ने कहा था कि ये नमोबादगो या चूटक के प्लांट था इंडस पारी छोटे छोटे, कि जी वो जमात अली शाह के खिलाफ रिपोर्ट बनाओ। और उसने एक लड़का था, सीनियर जॉइंट कमिश्नर था, वो एक्टिंग कमिश्नर हो गया, ही वॉज फ्रॉम सिंध, उससे बनवाई थी, और वो जो है ना वो उसके बाद जी फना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और मजिस्ट्री ने उस पर एक कमेटी बनाई। वो कमेटी में वन मैन कमेटी, इम्तियाज ताजवर, ही वॉज सेक्रेटरी वाटर एंड पावर, शकील दुरानी उस वक्त चेयरमैन थे, उन्होंने वो रिपोर्ट बनाई और कमाल मजूदुल्ला ने उस रिपोर्ट को चेंज करके जी मेरे खिलाफ जाए। लेकिन अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि ये इम्तियाज हुसैन जो आए थे सेक्रेटरी वाटर एंड पावर, उन्होंने मुझे कहा शाह साहब इन्होंने बड़ी ज्यादती की है आपके साथ, मैं एक कमेटी बना रहा हूँ थ्री मेंबर, जिसमें नस्पा के चेयरमैन, जिसमें वापडा के जो है चेयरमैन और उसमें चीफ इंजीनियरिंग एडवाइजर के चेयरमैन, तीन मेंबरों की उन्होंने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने, मैं उस वक्त रिटायर हो चुका था, बनाया उन्होंने कमेटी ने और कमेटी ने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा जी सब झूठ है, ये रिकॉर्ड में मौजूद है चीजें, ये मीडिया में चीजें मौजूद हैं। और मेरे पास मैं तो जो है मुझे किसी ने आज तक पूछा ही नहीं, ना FIA है ना सी वो कंट्रोल लिस्ट है ना कुछ है, ये सारा मैं तो मीडिया में देखता हूँ। वो लोग जो है वो जनाब ये हो गया लूट गया फना हो गया, मैं तो खुद हैरान होता हूँ कि ये किस तरह हो गया। आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट जेलम, हमारे जो बूढ़े हैं जमीर जाफरी हैं उनके बेटे हैं और हमारी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान बनने में भी और जो है ये आर्मी में है, इस तरह की बात नहीं है कोई जमात निशा कोई हिज नॉट ए कावर्ड मैन। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों का मुंह बंद होना चाहिए, अगर किसी के पास सबूत है तो वो कोर्ट में आ जाए, मैं तो हाजिर हूँ, मैं तो आज भी कहता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है ना ये जो लोग क्रेडिबल रहे हैं, जो लोग अपनी 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 विजडम और अपनी कंपटीशन रखते हैं और वो रिजिस्ट करते हैं किसी को भी जो के कहते हैं कि हमने आप हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनके ये खराब हो जाते उनको और लेकिन वो फंदा भाई जमात निशा का केस नहीं था, ये रियासत का केस था,
रियासत का
इसमें सख्ती बटन पावर भी है, इसमें लॉ एंड जस्टिस डिवीजन है, इसमें फॉरन ऑफिस है, वो भाई फंदा जमात निशा के गले में क्यों डाल रहे हैं आप, वो इसलिए किसी CSS के गले में डाला है आज तक, वो भी तो हमारे साथ थे। तो ये खाम खा का जो है ना मेरा एक रोल है एक लेवल का।
सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके दौर में आप वर्ल्ड बैंक तक भी पहुंचे, देयर वाज अ टाइम के दरमियान में हमने अपने न्यूट्रल एक्सपर्ट की भी कोशिश की एंड देन अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक तक भी आप पहुंच जाते हैं और मतलब मीडिएशन भी आ जाती है, कभी पाकिस्तान के इस पूरे के प्रोजेक्ट में अदर देन दिस केस एवर दे इन्वॉल्व द वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मीडिया को इन्वॉल्व किया इंडस वाटर से मुतल्लिक किसी और केस में?
मैं कहता हूं जी ये वाइल्ड केस था,
वाज ओनली वन
कमीशन इंडस वाटर कमीशन का जो हमने 3-2 से जीता है, वगरना कुटकना केस देख लें,
ठीक सर,
गाना कच्छ देख लें,
ठीक सर,
इन्होंने गवर्नमेंट ने मुंह की खाई है।
सही सर, अब यहाँ पे
फर्स्ट एवर केस था।
बहुत आज आपकी सबसे
इवन देन मैंने उनका कहा कि ये इसमें थोड़ा सा जो कुछ मुझे महसूस होता है उसको मजीद आगे रिफाइन करने की जरूरत है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज तक बगलार बने या नेमोबाद गो हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, आज तक एक कतरा पानी जो है इन प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान का नहीं रुका। आप पंजाब इरिगेशन से पूछ लें, आप वापडा से पूछ लें, मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है। लेकिन ये मैं कहता हूं कि इंडिया हमारा दोस्त नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसको कोई ऐसा टूल ना दें जो कि वो मिस यूज करे। लेकिन ये खदशात जो हैं, खदशात हमें रखकर अपना घर ठीक करना चाहिए, वो खदशात कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करती। हमने अपनी पूरी कोशिश कर दी जो टीटी में है।
आपने सर बड़ी प्यारी बात कही कि हमें अपना घर ठीक करना है। मैंने आज प्रोग्राम के शुरू में कहा, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को इस वक्त शायद मेरी बात बुरी लगेगी, जो हमारा बरेआजम एशिया है कैन बी वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट बरेआजम, रीजन बीइंग के इस बरेआजम की 5 ताकतें न्यूक्लियर पावर्स हैं और साथ साथ हैं आप रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, आगे आप ईरान की तरफ आ जाएं, और अगर हम एक दूसरे को पुल करते हैं तो वी कैन बी स्ट्रांग। मगर एक बात याद रखिएगा कि अगर बाकी जगह हैं यूरोप और वेस्ट कभी भी बरेआजम एशिया को स्ट्रांग नहीं देखना चाहते, और अगर आप देख लें तो 3 बड़े ताकतें उधर ही बैठी हुई हैं, जिसमें आप रशिया की बात कर लें, जिसमें आप चाइना की बात कर लें, और ये बिल्कुल हकीकत है कि इंडिया इस वक्त पांचवी ताकत है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान भी अपने आप को इतना इकट्ठा कर ले, और अगर ये ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रयाज़ एशिया तो रूल करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा डिवाइड एंड रूल होते रहेंगे, जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस विल प्ले अ रोल, जिसमें तमाम ममालिक